लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे वैवाहिक जीवन की तैयारी में लगे युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे ख्रिस्तीय समुदाय से समर्थन प्राप्त कर विवाह के सौंदर्य का ध्यान करें तथा प्रेम, उदारता, निष्ठा और धैर्य में विकसित होते रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवंस एवं छोटे नागपुर की कलीसिया के आरंभिक इतिहास पर चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने फादर लेवंस के मिशन पर गौर करते हुए देखा था कि उन्होंने 12वें के सभी लोगों से मुलाकात करने और उनके विश्वास को मजबूती प्रदान करने के बाद छिछाड़े क्षेत्र की ओर आगे बढ़े। छिछाड़े में यह उनकी पहली यात्रा थी, फिर भी लोगों ने उनका खुलकर स्वागत किया। आइए अब आगे सुनते हैं कि छिछाड़े के लोगों ने विश्वास की ज्योति को किस तरह अपने बीच जगह दी। फादर लेबंस रांची के डेरा में छिछाड़े के कुछ लोगों को धर्म शिक्षा दे चुके थे और उन्हें भविष्य में बपतिस्मा देने के आश्वासन के साथ वापस भेजा था। उन लोगों ने घर लौटकर छिछाड़ी में लोगों को प्रार्थना एवं विश्वास की मूल बातों को सिखाना शुरू किया था। लोगों ने गांव के चारों ओर चार गांव के जगह बना लिया था, जहां वे रविवार को प्रार्थना के लिए जमा होते थे। राज्य से प्राप्त चंदवा एवं स्कापुलर भी वे खुले आम पहनने लगे थे। सतावट, मारपीट एवं दुर्व्यवहार के बावजूद वे विश्वास में दृढ़ता से खड़े थे। जब फादर लेबंस एवं उनके साथी मिशनरी उनके पास आए तो उनके लिए यह एक बहुत अच्छा मौका था। इस तरह 12,000 लोगों ने कैथोलिक मिशन में भर्ती किए जाने का आग्रह किया। मिशनरी छिछाड़ी में 2 ही दिन रुक सके क्योंकि ख्रिस्त जयंती मनाने का दिन आ गया था। फादर कार्टोन एक ही दिन रुककर क्रिसमस की पूर्व संध्या अपने मिशन स्थान नवाटोली लौट गए। फादर लेबंस और फादर डेहोन क्रिसमस के दिन शाम को बिंदोरा लौटे। बिंदोरा में ख्रिस्त जयंती मनाना एक उपयुक्त स्थान था। ख्रिस्त जयंती के दिन खुले मैदान में मिस्सा बलिदान अर्पित किया गया, जिसमें करीब 3,000 विश्वासी उपस्थित हुए। वे अपने साथ झंडे और गाजा बाजा लेकर आए थे। मिस्सा के बाद लोगों ने दिन भर गीत गाकर एवं बाजा बजाकर क्रिसमस महोत्सव मनाया। फादर लेबंस और उसके साथी मिशनरी बिंदोरा में मिस्सा बलिदान अर्पित करने के बाद 12वें वापस नहीं लौटे, किंतु रांची लौटने से पहले 2 सप्ताह तक वे आसपास के क्षेत्रों में घूमते रहे। उन क्षेत्रों में उन्होंने प्रार्थना चलाने तथा सभा का संचालन करने के लिए चपरासियों की नियुक्ति की। यह मिशन को व्यवस्थित करने की कोशिश थी। 6 जनवरी 1891 को फादर लेबंस रांची लौटे। वे इस यात्रा से पूरी तरह संतुष्ट थे। अपनी यात्रा के दौरान फादर लेबंस और उनके साथियों ने गैर ख्रिस्ते माता पिताओं के कुल 1,922 बच्चों को और ख्रिस्ते माता पिता के 3,815 बच्चों तथा 360 वयस्कों को बपतिस्मा दी थी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इतने सारे लोगों ने क्यों अचानक कैथोलिक विश्वास को अपना लिया। निश्चय ही यह ईश्वर के प्रति पूर्ण एवं निस्वार्थ प्रेम नहीं था, बल्कि सामाजिक बुराई से अपने लिए सुरक्षा की चाह थी, जिसके लिए वे अपने देवी देवताओं को छोड़ने एवं एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार थे, क्योंकि बुरी आत्माओं से उनका भय सामाजिक एवं धार्मिक रास्तों से नजदीकी से जुड़े थे। यही कारण था कि वे मिशन की ओर भीड़ के भीड़ आने लगे। फादर लेबंस को पूरी उम्मीद थी कि पूरे क्षेत्र में ख्रिस्त विश्वास न केवल गहरा जड़ जमाएगा, बल्कि ख्रिस्त जीवन फलेगा फूलेगा। इसके लिए आवश्यकता थी कि बारवे में एक मिशन स्टेशन खोला जाए, लेकिन अभी तक कलकत्ता से अनुमति नहीं मिली थी। रांची से ही फादर लेबन्स बारवे के विश्वासियों की चिंता कर रहे थे। वे सिर्फ एक काम कर सकते थे कि वे खुद उनका दौरा करें अथवा समय समय पर किसी दूसरे मिशनरी को वहां का दौरा करने भेजें। इस तरह मिशनरियों एवं खुद फादर लेबन्स पर काम का भार अत्यधिक बढ़ गया था। इन सब के कारण फादर लेबन्स का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। फादर लेबन्स बारवे से बीमार स्थिति में लौटे थे और वे लगातार खांस रहे थे। उन्होंने अपने सुपीरियर फादर हेगनबेक को बतलाया कि उन्होंने बारवे के लोगों से बहुत अधिक बातचीत की है और उनकी स्थिति कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी, पर सुपीरियर ने तुरंत आदेश दिया कि वे कुछ दिनों के लिए आराम करें। फादर लेबन्स ने आदेश का पालन करते हुए आराम किया, लेकिन आराम करने के बाद भी उनके गले की तकलीफ कम नहीं हुई। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सुधार हुई थी, यह फादर लेबन्स के लिए काफी था कि वे डेरा में अपना काम फिर शुरू करें। बारहवे से 6 जनवरी को वापस लौटने के बाद एक माह भी नहीं हुआ था और गले में सुधार भी नहीं हो पाया था कि वे फिर से घोड़े पर सवार होकर पश्चिम के अपने ख्रिस्तियों से मिलने के लिए चले गए। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स एवं छटनागपुर में कार्तिक मिशन की शुरुआत पर एक चर्चा सुन रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
हम सबका है तू ही सितारा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा, हम सबका है तू ही सितारा, परम पिता ने है तुझको भेजा।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका चापलूसी। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओ, आप चाहे जिस पेशे में हों, कौशल बढ़ाने के लिए निजी स्तर पर हमेशा प्रयास करते रहना आपकी तरक्की की एक सीढ़ी है। आप जितना बेहतर कार्य करेंगे, आपके बॉस की निगाह आपकी काबिलियत पर होगी। आपकी तरक्की आपके काम के साथ साथ आपके व्यवहार पर भी निर्भर करती है। अगर आप अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं, तो बिना झिझक पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात बॉस से कहें, लेकिन कभी भी चापलूसी या खुशामदी का सहारा ना लें। नौकरी में चुनौतियों का आना आम बात है, उसका दृढ़ता से सामना करें, क्योंकि सिर्फ यही मायने रखता है कि बदलते कार्य क्षेत्र में आप खुद को कैसे आगे रखते हैं। सबके साथ मिलकर काम करें, जिससे आपकी वजह से कोई परेशान न हो। हर दिन स्वयं में बदलाव लाएं और अच्छे काम का प्रदर्शन करें। आप ऑफिस में अपना बेस्ट देते रहें। आपकी वजह से अगर आपकी कंपनी के ग्रोथ या विकास में सहायता मिलती है, तो आपकी तरक्की आपकी कंपनी की मजबूरी साबित होगी। मेहनती और रचनात्मक लोगों को कोई भी कंपनी खोना नहीं चाहेगी। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका चापलूसी।
सर, आपकी यही आदत आपको औरों से एकदम अलग करती है।
अच्छा, कौन सी आदत?
यही सर, कि आप मालिक होकर भी अपने कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं।
मतलब मैं तुम्हारे साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ, यही ना? अच्छा मयूरी, यह बताओ कि मुझे तुम लोगों के साथ हंसी मजाक क्यों करना चाहिए?
क्योंकि हंसी मजाक से आपस की दूरियां घटती हैं सर।
बिल्कुल गलत। मैं तुम लोगों के साथ हंसी मजाक केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे ऑफिस का माहौल हल्का फुल्का रहता है और तनाव खत्म हो जाता है, जिससे ऑफिस का माहौल और काम गंभीरता और ये डेली रूटीन से हटकर खुशनुमा, ताजगी और हल्के फुल्के वातावरण में हो सके। बस इसलिए मैं हंसी मजाक करता हूँ।
जी सर, बिल्कुल सही है सर, आपकी तो बात ही निराली है।
और तुम ये जो मेरी झूठी तारीफ करती हो ना, ये तुम्हें बंद करना चाहिए।
सर, मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करूंगी? आप मुझे इतना चाहते हैं, मैं आपकी झूठी तारीफ क्यों करूंगी भला?
मैं तुम्हें इतना चाहता हूं, मतलब?
मेरा मतलब है सर कि आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं।
कितना ख्याल रखते हैं?
मेरा मतलब सर, आपने मुझे नौकरी दी, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, जब छुट्टी चाहती हूँ आप दे देते हैं।
देखो मयूरी, बात को ठीक से समझ लो, मुझे किसी ना किसी को तो नौकरी पर रखना ही था, मैंने तुम्हें रख लिया। रही छुट्टी की बात, तो तुम अपनी बीमार माँ की देखभाल भी करती हो, सो मना कर नहीं पाता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जाओ, बेकार की बातें बनाने की बजाय काम कर लिया करो। जाओ, जाकर विशाल को भेजो।
जी सर।
सर, आपने बुलाया?
हाँ विशाल, बैठो। अगले सप्ताह ऑडिटर्स आ रहे हैं।
लेकिन सर, उनके सामने हम रखेंगे क्या? बैलेंस शीट तो अधूरी है।
इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मयूरी को तो चापलूसी करने से ही फुर्सत नहीं है, इसीलिए उसका काम अधूरा पड़ा है। उसकी माँ की वजह से मैं उसे बाहर का रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, वरना खैर अब सारा काम तुम्हें ही देखना और करना है।
मयूरी ने तो पिछले 10 महीनों से एंट्री नहीं की है सर।
मुझे पता है, इसलिए मैं तुमसे ये काम करने को कह रहा हूँ। और अब पिछले 10 महीनों की एंट्री कर देना, उसके बस का काम नहीं है।
ठीक है सर, हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें रात दिन एक करना होगा सर।
जो भी करना है करो विशाल, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर काम पूरा चाहिए।
इसके लिए हमें प्रेजेंट वर्क पूरी तरह से रोकना पड़ेगा सर।
मैंने कहा ना, किसी भी कीमत पर।
राइट सर। सर, क्या इस काम के लिए मैं कुरैशी, लवीना और देव को ले सकता हूँ सर?
बिल्कुल, तुम जिसे लेना चाहो उसे अपनी टीम में ले सकते हो, मुझे हर हाल में बस काम चाहिए।
सर, यह ऑडिट आगे नहीं बढ़ सकती?
नहीं, क्योंकि 15-20 दिन बाद मैं बिजनेस टूर पर अब्रॉड जा रहा हूँ।
मैं समझ गया सर, हम लोग आज और अभी इसी काम पर लग जाते हैं।
देयर यू आर, यही मैं चाहता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर रिजल्ट चाहिए, बस रिजल्ट।
वो हम आपको दे देंगे सर।
किसी भी चीज की जरूरत हो तो ऑफिस अकाउंट में मंगवा लेना, लेकिन काम मत रोकना, ठीक है?
मैं समझ गया सर।
देन डू इट।
राइट सर।
एक बात तो बताओ विशाल, ये हर बार बॉस तुम्हें ही अर्जेंट वर्क क्यों पकड़ा देता है?
मयूरी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि बॉस को जिस पर भरोसा और विश्वास होता है ना, वो उसे ही काम पकड़ाते हैं। समझी मैडम मयूरी?
और मैंने क्या भिड़वा दिया? काम तो तुम्हें केबिन में बुलाकर बॉस ने ही दिया है ना?
वो माना कि काम तो बॉस ने ही दिया है, लेकिन उस काम का कारण तो तुम ही हो ना।
तुम तो जानते हो विशाल कि मेरे बड़े भाई को घर की प्रॉब्लम से नहीं, केवल आवारागर्दी से ही मतलब है।
मगर प्रॉब्लम और टेंशन किस घर में और किसके साथ नहीं है मयूरी?
ये तो मैं भी जानती हूँ विशाल, लेकिन किसी के साथ कम तो किसी के साथ ज्यादा होती है।
मानता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं कि अपने घर की समस्याओं को अपने काम की जगह या ऑफिस में लेकर तो नहीं आया जा सकता।
लेकिन सभी लोग तो ऐसा नहीं करते ना।
सभी लोग ऐसा क्यों नहीं करते मयूरी? क्या सभी लोग तनख्वाह नहीं लेते?
चलिए छोड़िए इस टॉपिक को, इस अर्जेंट काम का बोनस कितना मिल रहा है या फिर प्रमोशन कब मिल रहा है?
मैं अपना काम सिर्फ तनख्वाह के लिए करता हूँ, बोनस और प्रमोशन के लिए नहीं।
गुड। और फिर कपूर साहब जानते हैं कि अर्जेंट काम से आप कभी मना नहीं करते?
काम अर्जेंट हो या सिंपल, काम मेरे लिए काम है। हम यहाँ काम करने आते हैं और तनख्वाह के रूप में हमें उसकी कीमत चुका दी जाती है, दैट्स ऑल।
ओके, चाय पीने आ रहे हो?
थैंक्स, मैं अपनी चाय यहीं ले लूंगा। सर ये जुलाई, ये अगस्त और ये उसके बाद के अप्रैल तक की एंट्री हमने कर दी है सर।
मतलब ये कि हमारा काम पूरा हो गया?
यस सर, अब ऑडिटर्स को आप कभी भी बुला सकते हैं।
गुड विशाल, वेरी गुड, मैं यही चाहता था। विशाल मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। इसके पहले मैंने जब भी तुम्हें अर्जेंट वर्क दिया है तुमने उसे पूरा कर मेरी उम्मीदों पर तुम खरे उतरे हो। विशाल मैं सोचता हूँ तुम्हारी इस योग्यता का कुछ ना कुछ इनाम तो तुम्हें मिलना ही चाहिए।
यह तो मेरा काम है और काम के बदले में आप मुझे तनख्वाह भी तो देते हैं।
अगर काम के लिए ईमानदार बने रहना तुम्हारा फर्ज बनता है तो काम के प्रति तुम्हारी गंभीरता और लगन को सराहना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना? इसके लिए मैं तुम्हारी
मे आई कम इन सर?
आओ मयूरी, तुम अच्छे समय पर आई हो। विशाल के लिए खुशखबरी है कि मैं उसे एक अकाउंट सेक्शन में असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर रहा हूँ।
बधाई हो विशाल, अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ जाएगी।
वो तो जाहिर सी बात है मयूरी।
मगर सर एक रिक्वेस्ट है कि मैंने और विशाल ने कोई एक दो दिन के अंतराल से ही यहाँ नौकरी ज्वाइन की थी।
मैं जानता हूँ कि विशाल तुमसे 3 दिन जूनियर है, मगर मैं ये प्रमोशन जूनियर सीनियर के नाते नहीं बल्कि विशाल के काम करने की योग्यता को देख कर दे रहा हूँ। आशा है तुम्हारा भ्रम टूट गया होगा कि अपने बॉस की चापलूसी करके प्रमोशन पाया जा सकता है।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर।
चापलूसी, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अमृता आनी और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।